श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की नवदीप मंडल श्री धाम मायापुर की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री श्री राधारास बिहारी ललिता विशाखा सखी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जगधर्म हरिनाम संकीर्तन की हरिनाम विश्व हरिनाम दिवस महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की टाइगोर प्रेमानंदे श्रीमद भागवतम स्कंधे अध्याय एक श्लोक संख्या 14 तो विश्व हरिनाम दिवस पूरे विश्व में हरिनाम के महिमा के ऊपर भक्त लोग गोष्ठी कर रहे हैं। अनेक प्रकार के यात्राएं हरिनाम संकीर्तन हरिनाम गोष्ठी हरिनाम से संबंधित कथाएं आयोजित की जा रही हैं पूरे विश्व में। इसके तहत आज हम लोग हरिनाम के ऊपर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में और श्लोक संख्या 14 में भगवान नाम की महिमा का उल्लेख है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके। तो श्रीमद् भागवतम स्कंदे अध्याय एक श्लोक संख्या 14 आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं भयम्। माता जी शब्द आपन्ना फंसे हुए संस्कृत जन्म मृत्यु के चक्कर में घोराम अत्यंत उलझे या जो नाम परम नाम विवशः अनजाने में घृणान उच्चारण करते हुए ततः उससे सद्यः तुरंत विमुच्येत मुक्त हो जाता है यत् जो विभेति डरता है स्वयं स्वयं भयम् साक्षात भय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तात्पर्य, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण हिरण्यकश्यपु कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान करके रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। अनुवाद एक बार दोहराएंगे, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। इससे मतलब भगवान के नाम से, भगवान के नाम से भय भी भयभीत रहता है, काल भी डरता है। तो इस श्लोक में सनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से इस घोर कलि युग में जीव के लिए सबसे बड़ा सुलभ और शक्तिशाली क्या साधन है। इस कलि को लौह युग कहा जाता है, लौह का युग या कलह युग है। हर आदमी लड़ाई में, फसाद में, अनेक प्रकार के उलझनों में उलझा रहता है। परिवार में लड़ाई होता है, पड़ोसी से होता है, गांव एक दूसरे गांव से लड़ता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और विश्व स्तर पर युद्ध चलता रहता है। इस घोर कलि युग में लोग बहुत उपद्रवी होते हैं। आपस में बात बात में लोग लड़ते हैं, बस में ट्रेन में हम लोग देखते हैं, ट्रेन में सीट के लिए लोग झगड़ जाते हैं, ये हमारी सीट है या कोई कुछ बोल दिया तो उस पर भी लोग उलझ जाते हैं। कलयुग में लोग हमेशा उपद्रव में और हमेशा कोई ना कोई परेशानियों में उलझे रहते हैं। प्रायण सभ्य कलावस्मिन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग है द्रुता। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन जुगे जना, प्राय कलियुग में लोग अल्पायु के होंगे और दुर्भाग्यशाली होंगे, सौभाग्य नहीं होगा, दुर्भाग्यशाली होंगे और मंद सुमंद मतयो बहुत आलसी होंगे और मंद बुद्धि के होंगे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है द्रुता। इसे ऐसे व्यस्त जीवन में, ऐसे उलझनों में जीव के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली साधन क्या है? वर्तमान समय में कोई हिमालय में जाकर ध्यान लगाना या जल में समाधि लेकर भजन करना, जैसे बहुत सारे ऋषि लोग जैसे सौभरि मुनि जल में समाधि लेकर भजन करते थे, तो वर्तमान समय में सुविधा नहीं है, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ऋषियों ने जिज्ञासा किया, कहाँ पर जिज्ञासा हो? तो सौनक नैमिषा निमिष क्षेत्र ऋषय शनकादय नैमिषारण्य में, जिस जगह का प्रभाव है कि वहाँ नाम संकीर्तन करने से, भगवत कथा सुनने से, भगवान से संबंधित कोई भी कार्य करने से उसका फल जो है अक्षय होता है, उसका बहुत महिमा है नैमिषारण्य का। इसलिए वहाँ अहर्निश कथा होता है, भगवान का नाम कीर्तन होता है, उसकी बहुत महिमा है नैमिषारण्य की। नैमिषारण्य में ऋषि लोग विचार कर रहे थे और अंत में सुखदेव सुत गोस्वामी से वो लोग पूछेंगे कि इस कलियुग में क्या साधन है, क्या करना चाहिए। जीव के लिए सबसे बड़ा आत्यंतिकी साधन क्या है? जो जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु के जाल में उलझा हुआ है, तो उसके लिए सुलभ मार्ग क्या है बताइए? बहुत सारा प्रश्न करते हैं। इस श्लोक में ऋषि लोग कह रहे हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई अनजाने में भी अगर भगवान का नाम लेता है तो उसको फल प्राप्त होता है, लाभ मिलता है, अनजाने में भी, या आलस में, प्रमाद में, या क्रोध में, किसी पर क्रोध करके। से कभी कभी कोई किसी को कहता है कि आप भगवान का नाम जपिए, हरे कृष्ण तो कोई कहता है कि आप चलो बहुत भगवान का नाम जपने वाला हो गया है, तो ऐसे भी वो नाम लेता है क्रोध में भी, या मजाक में भी, या उपहास में भी, तो भी उसका लाभ होता है। अनजान में भी कोई गलती से भी नाम भगवान का उच्चारण कर लेता है तो भी उसका पाप दूर हो जाता है। नाम का जो वस्तु शक्ति है वो यह नहीं देखता है कि उसकी मानसिकता क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। जैसे अजामिल जो है भगवान का नाम लिया तो उसकी मानसिकता अपने पुत्र पर थी, वो पुत्र को पुकारा था, यद्यपि भगवान के नाम को नहीं पुकारा था, अपने पुत्र के लिए, पुत्र में अभिनिविष्ट चेतना से अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारा। लेकिन नारायण तो भगवान का नाम है, जैसे बिजली का तार है उसको कोई बच्चा पकड़ ले अनजाने में, या कोई जान कर पकड़े तो उसका प्रभाव होता है। याग को आप जान से जान कर पकड़ लिए, अनजाने में आग को संपर्क कर लीजिए तो उसमें प्रभाव, अग्नि का प्रभाव आता है। उसी तरह से भगवान का नाम कोई कैसे भी ले, किसी भी अवस्था में उसका लाभ उसको मिलता है। और वर्तमान समय में लोग इतने आलसी हो जाएंगे, स्नान नहीं करेंगे, अब अपनी दिनचर्या में नहीं रहेंगे, जब इच्छा तब सोएंगे, जब इच्छा तब जगेंगे, किसी भी अवस्था में खा लेंगे, हाथ धोएंगे तो नहीं भी धोएंगे, बहुत लोग हाथ भी नहीं धोते हैं, मुख भी नहीं धोते हैं, खा लेते हैं। जो आलसी लोग होते हैं बोलते हैं कि खा पीता करे स्नाना तापर खुश रहे भगवान। एक हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, बोले कि वो खा करके स्नान करते थे, पहले खा लेते थे और 10 बजे स्नान करते थे, फिर गायत्री करते थे। ब्राह्मण थे वो, आचार्य किए थे, संस्कृत से BHU से आचार्य किए थे। तो 10 बजे वो गायत्री कर रहे थे, तो मैं कहा कि गायत्री सुबह करना चाहिए आपको, त्रिकाल संध्या, सुबह में, मध्यान्ह में और संध्या बेला में। तो और मैं कहा कि स्नान भी पहले करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, ब्राह्मण को ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेना चाहिए, लेकिन वो खाने के बाद नहाते थे प्रतिदिन। तो मैं कहा कि आप ब्राह्मण हैं तो सुबह नहा लेना चाहिए और सुबह गायत्री कर लेना चाहिए। तो कहे कि खा पीता करे स्नाना तापर खुश रहे भगवान। जो खा पी करके स्नान करता है तो उस सब भगवान, वो तुकबंदी करके कविता बना ली। मांसाहारी भी थे, मांस भी खाते थे। मैं कहा कि ब्राह्मण को मन से मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए, मांसाहारी अगर आप हैं तो आप तो मनुष्य से भी निम्न स्तर पर हैं, पशु स्तर पर हैं, शेर है, बाघ है, कुत्ता है, इस स्तर पर हैं। आपको गायत्री जपने के लिए पहले मनुष्य होना पड़ेगा, मनुष्य के बाद फिर ब्राह्मण स्तर पर होंगे तब गायत्री जप सकते हैं। गायत्री जपने के लिए योग्यता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग 4 नियम पालन नहीं करते हैं, जिनका शुद्ध आहार नहीं है, वो पशु स्तर पर हैं। इसलिए उनको पशु से पहले मनुष्य स्तर पर लाना है, और मनुष्य स्तर पर आने के बाद फिर उनको भक्त ब्राह्मण स्तर पर लाना है। तो जो ब्रह्म स्तर पर आ जाता है वो गायत्री जप करता है। तो कलि युग में सारे लोग शूद्र हैं, सारे लोगों का आचार विचार, खान पान, रहन सहन, उसकी चेतना दूषित हो गई है। कलि युग में हर वस्तु दूषित है। कलो दोष निधे राजन, हर जगह दोष आ गया है, हर जगह मिलावट हो गया है, कोई भी चीज जो है शुद्ध रूप में नहीं है। पानी भी हवा भी शुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान का नाम शुद्ध है। और भगवान का नाम कोई किसी भी अवस्था में ले, कोई भी ले, चाहे वो चंडाल हो, किरात हुणान पुलिंद पुलकस आभीर संड जवन खसाद, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर भगवान का नाम जपता है तो उसको लाभ मिलता है। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो पीवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सह बाह्याभ्यंतर सुचि। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि चाहे वो पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्था गतो पीवा, हर तरह से वो जो है शुद्ध हो जाता है। अंत बहि, भगवान का नाम जपने से बाह्य और अंदर शुद्धि हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरी काक्षम, भगवान का एक नाम है पुंडरी काक्ष, कमल नयन, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर जपता है, यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि, वह भीतर बाहर दोनों शुद्धि हो जाता है। ले नाम का बहुत प्रभाव है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नाम के प्रभाव से स्वयं भगवान नाम की महिमा को स्थापित किए। और झारखंड प्रदेश में जंगल से जा रहे थे, जंगल में हिंसक जानवर, शेर, बाघ, હાથી, લોમડી, ગીધડ, ગેણે, સર્પ, છીપ, બિસ્કિલી, અજગર, બડે બડે જંતુઓ કો હરિનામ મે ઉનકો નચા કરકે ઉનકે હૃદય મે પ્રેમ સંચાર કિયે. ચેતન મહાપુર યહાં તક કી પથ્થર ભી, જિસ પથ્થર પર ચેતન મહાપુર નૃત્ય કરાયે થે ઝારખંડ કે જાનવરો કો, વો પથ્થર પર ફૂટપ્રિન્ટ હો ગયા શેર કા, બાઘ કા. આજ ભી વો જગહ હૈ ઝારખંડ મે, હજારીબાગ કે આસપાસ મે વો જગહ હૈ, ઓર નદી હૈ, ઉસકા નામ હૈ એસે ગોરાઈ કુછ નામ હૈ, ચેતન મહાપુર કે નામ પર હી હૈ. તો બહોત બડા ચટ્ટાન ફર્શ સમતલ ચટ્ટાન થા, ઉસી પર ચેતન મહાપુર કીર્તન કર રહે થે. તો સારે જંગલ કે હિંસક જાનવર વહાં પર આ ગયે. જાને કે ક્રમ મે સર્વપ્રથમ એક બાઘ રાસ્તે મે સોયા હુઆ થા, ઓર ચેતન મહાપુર ભગવાન નામ કા જપ કરતે હુએ નામ ઇતના ભાવાવિષ્ટ હો ગયે, નામ ઇતના પ્રેમ કા અવિષ્ટ હુઆ કી ઉનકો શુદ્ધ નહી થા કી આગે કોન હૈ ક્યા હૈ. નામ કીર્તન કરતે હુએ જા રહે થે તો બાઘ સે ટકરા ગયે, સોયા હુઆ બાઘ થા. તબ ઉનકો અભિનિવેશ હુઆ, તબ કહે બાઘ કો કહે કી ઉઠો, કૃષ્ણ નામ લો. પ્રભુ કહે ચેતન મહાપુર બાઘ સે કહે કી ઉઠો, પ્રભુ કહે કૈસે હૈ વ્યાઘ્ર, પ્રભુ કહે કૃષ્ણ કૃષ્ણ વ્યાઘ્ર ઉઠીલા, આ કૃષ્ણ નામ સુનીતે વ્યાઘ્ર નાચીતે લાગીલા. ચેતન મહાપુર કહે કે ઉઠો ઉઠો, જૈસે હમ લોગ કિસી કહેતે હૈ કોઈ સોયા હૈ મંગલ આરતી બોલતે ઉઠો ઉઠો, બોલતે નહીં પાંચ મિનિટ ઓર સો. પાંચ મિનિટ કા ઉસ સમય બહોત મહત્વ હોતા હૈ. કહ્યું કિસી કો કોઈ જગાને જાતા બોલતા પ્રભુજી પાંચ મિનિટ, પાંચ મિનિટ પાંચ ઘંટા ભી બીત જતા હૈ લેકિન માલુમ નહીં પડતા હૈ. હમ ઇતના માયા કે ગોદ મે સોયે હૈ કે હમ ભૂલ જાતે હૈ કે પાંચ મિનિટ હુઆ કે પાંચ ઘંટા હુઆ. તો ચેતન મહાપુર બા કહે કે પ્રભુ કહે ઉઠા વ્યાઘ્ર, પ્રભુ કહે. ચેતન મહાપુર કહે કે ઉઠો ઉઠો નામ જપ કરો, પ્રભુ કહે કૈસે ભૂલ જતા હું. પ્રભુ કહે કૃષ્ણ કૃષ્ણ વ્યાઘ્ર ઉઠીલા, ચેતન મહાપુર જબ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કહે તો બાઘ જો હૈ ઉઠકર ખડા હો ગયા, ઓર કૃષ્ણ નામ સુનતે હી વો નાચને લગા, ઓર જબ નાચને લગા કૃષ્ણ નામ સુનીતે વ્યાઘ્ર નાચીતે લગીલા, તો ઉસકે નાચતે હુએ દેખકર અન્ય જંતુ ભી વહાં આને લગે. ચેતન મહાપ્રભુ નામ કા એસા પ્રભાવ વહાં પ્રસ્તુત કિયે કે જંગલ સે સબ જાનવર આને લગે, માંદ સે, ગુફા સે, શેર હૈ, હાથી હૈ, ગેંડે હૈ, અજગર હૈ, સુવર, શિપકીલી, સર્વ સબ જમા હો ગયે. ધીરે ધીરે સબ આ કરકે ઓર નાચને લગે, ઓર ઇતના નાચ હુઆ કે સબ લોગ ભાવ વિભોર હો ગયા, ઓર એક દૂસરે કો આલિંગન કરને લગે. જો એક દૂસરે ઈર્ષ્યા કરતે થે, દ્વેષ કરતે થે, વો ગલે મે આલિંગન કરકે નાચને લગે. વ્યાઘ્ર મૃગ કરે અન્યોર આલિંગન, આ મુખે મુખ દિયા કરે અન્યોર ચુંબન. વ્યાઘ્ર ઓર મૃગ, મૃગ મને હરિણ જો હૈ વ્યાઘ્ર સે દૂર રહેતા હૈ, બાઘ કા આવાજ સુન કરકે મૃગ ભાગ જતા હૈ, લેકિન ચેતન મહાપુર એસા સબકે હૃદય મે પ્રેમ પૈદા કિયે, કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાય તે, કે જો હિંસક વૃત્તિ હૈ વો સમાપ્ત હો ગયા. બાઘ કે અંદર જો અન્ય જીવો કે પ્રતિ હિંસા કરને કી ભાવના થી ખતમ હો ગઈ. બાઘ જો હૈ હર પ્રાણી કે પ્રતિ હિંસા રખતા હૈ મારને કે લિયે. બાઘ કે સામને આપ જાયંગે તો આપકો આલિંગન નહીં કરેગા, વો આપકો અટેક કરકે માર દેગા. કોઈ ભી જાનવર હો બાઘ કે સામને અગર ગયા ઉસકો માર દેતા હૈ, લેકિન ચેતન મહાપ્રભુ એસા પ્રેમ કા उसके हृदय में बाघ के शेर के अंदर ऐसा प्रेम का संचार किए कि वो हरिण को गले आलिंगन किया और चुंबन करने लगा, मुखे मुख दिया करे अन्योर चुंबन। चेतन महाप्रभु ये दिखाए कि कलि युग में नाम की इतनी महिमा है। ते जो संकीर्तन है, जैसे द्वापर में भगवान रास किए थे कृष्ण, कृष्ण ब्रज भूमि में रास नृत्य किए थे, उसी तरह चेतन महाप्रभु महासंकीर्तन ये रास का ही दूसरा स्वरूप है। कलि युग में रास मतलब महासंकीर्तन है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रास का ही ये दूसरा रूप प्रस्तुत किया है। जो हरे कृष्ण आंदोलन है, जो हरे कृष्ण नाम का कीर्तन है, ये रास नृत्य ही है। तो सारे जानवर आपस में प्रेम से आलिंगन करके नाचने लगे, व्याघ मृग करे अन्योर आलिंगन, मुखे मुख दिया करे अन्योर चुंबन, चुंबन देने लगे। आलिंगन तो कर ही रहे थे और चुंबन कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्व जो है ईर्ष्या और लड़ाई और झगड़े के फसाद में फंसा हुआ है। पूरा विश्व जो है एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है। हर विश्व जो है आग्नेय अस्त्र मिसाइल बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, क्यों? दूसरे को मारने के लिए। सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? हर देश आविष्कार कर रहा है कि हम दूसरे को जल्दी मार सकें, उसको डरा सकें, ज्यादा खुशहाली के लिए नहीं बल्कि विध्वंस करने के लिए हम लोग बना रहे हैं। जितना कम समय में हम दूसरे देश को खत्म कर दें, इस तरह के जो है आयुध बनाने के लिए हर देश लगा है कि ऐसा हम आयुध बनाएं, ऐसा हम मिसाइल बना लें, ऐसा फाइटर प्लेन बना लें कि जल्दी किसी देश को हम खत्म कर दें। और हर देश में यही प्रतिस्पर्धा है लड़ने के लिए, मारने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे विश्व में शांति नहीं आ सकती है। आप कितना भी बड़ा बड़ा मिसाइल आग्नेय अस्त्र बना लीजिए, फाइटर विमान बना लीजिए, जैसे राफेल फाइटर आया है ना भारत में, राफेल जो है वही आया है, तो चाइना थोड़ा डर गया है। तो वो अभी दूसरा चीज इंतजार कर रहा है, दूसरा चीज आविष्कार कर रहा है। तो हर देश जो है दूसरे को दबाने के लिए, मारने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यही विकास है। आज वर्तमान में विकास मतलब विनाश करना। हर आदमी अपने विनाश करने के लिए, मरने के लिए साधन तैयार किया है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि विश्व में बंधुत्व कायम करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, मैत्री स्थापित करने के लिए भगवान का नाम जो है, नाम संकीर्तन करना चाहिए। पूरे विश्व में भगवान का नाम संकीर्तन होगा तब लोग शांति से, अमन चैन से रह सकते हैं। तो मिसाइल बना करके, हम परमाणु बम बना करके और अपने को भय में डाल लेते हैं और भय में रहते हैं कि वो हमारे ऊपर अटैक न कर दे। तो चेतन महाप्रभु ने इस तरह से झारखंड में नाम लेकर के जा रहे थे। हरि बोल बोल प्रभु करे ऊंच ध्वनि, हरि बोल करके कृष्ण नाम कीर्तन करके घनाघोर जंगल से जा रहे थे। और पशु पक्षी वृक्ष लता पेड़ पौधे सब उस नाम से आनंद का अनुभव कर रहे थे। पशु पक्षी वृक्ष लता भी, जब चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम गायन करके चल रहे थे तो वृक्ष भी आनंद से रोमांचित होते थे। इसलिए भगवान का नाम कीर्तन करने से सबको आनंद की वृद्धि, सबके हृदय में आनंद का वृद्धि होता है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, कीट हो, पतंग हो, तरह से हरि बोल बोल प्रभु करे ऊंच ध्वनि से, हरे कृष्ण का कीर्तन करते ऊंच ध्वनि से करते थे, करे ऊंच ध्वनि। आ पशु पक्षी वृक्ष लता उस ध्वनि को सुन करके आनंद में विभोर हो जाते थे। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद के समुद्र का वर्धन करने वाला है जो भगवान का नाम है, आनंद के समुद्र का वर्धन करने वाला है। जो चैतन्य महाप्रभु इसको दिखाए करके, इसलिए यहाँ पर आपन्न संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गृणन, भगवान का जो नाम है संस्कृति, जो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझे हुए हैं, संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु, संस्कृति इति संसारम, संस्कृति मतलब जो हमेशा जन्म हुआ तो फिर मृत्यु के तरफ बढ़ गया, जो हमेशा बदलते रहता है, संस्कृति इति संसारम। संसार मतलब संस्कृति, जहां जन्म हो, जन्म के बाद फिर बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, जन्म के बाद बाल अवस्था, कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और फिर देहांतर, इसी को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मतलब जो हमेशा बदल रहा है, आपका जन्म हुआ, फिर बड़ा हुए, फिर थोड़ा ये हुए, फिर बूढ़ा हो गए, शरीर बदल जाता है। जो बचपन का शरीर है वृद्धावस्था में पहचान में नहीं आता है, आपका बचपन का फोटो कोई दिखाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे। आप अपना बचपन का फोटो अगर ना देखे हो, अचानक कोई देखे कि ये कौन आदमी है, कौन बच्चा है, उन्हें पता नहीं प्रभु जी, आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाएंगे। इसी को संस्कृति कहते हैं। तो आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन, जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीवों के लिए जो भगवान का नाम है यन्नाम विवशो गृणन, अनजाने में भी अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है, विवशो माने अनजान में भी, तो सद्यो विमुच्यत, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। क्यों? कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, यमराज भी इससे डरते हैं। भय माने यमराज भी, यद विभेति स्वयं भयम, भयम माने यमराज जी भी डरते हैं, भगवान के नाम से यमराज भी डरते हैं, भय भी डरते हैं। यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि साक्षात भय भी इसे भयभीत रहता है। इसलिए जो भगवान का नाम लेता है तो उसके पास यमराज नहीं आते हैं, आने का साहस नहीं करते हैं। अजामिल के प्रसंग में यमराज के दूत भाग गए डर से और जाकर के यमराज के पास गए, यमराज को बताया कि इस तरह की घटना हो गई है। यमराज समझ गए और बाद में कहे कि देखो, भगवान का नाम अगर कोई जपता है तो उसके पास मत जाना। किसके पास जाना? जो भगवान का नाम कभी नहीं जप किया है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो अपने जिह्वा से एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है उसको मेरे पास ले आना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस न समर्ति त चरणारविंदम, जो कभी भी भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता है, दर्शन नहीं करता है, जो कभी भी भगवान को एक बार भी नहीं प्रणाम किया है, ऐसे लोगों को मेरे पास लाना। मतलब एक बार भी अगर भगवान का नाम स्मरण किया है और भगवान को प्रणाम किया है तो यमराज फिर उसको नहीं लाते हैं। यदि शंकराचार्य लिखते हैं कि भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लो कणिका पीता। एक बार भी भगवत गीता पढ़ा है किंचित थोड़ा भी? भगवत गीता अगर कोई पढ़ लिया है थोड़ा भी और गंगा जल लो कणिका पीता और गंगा का एक कणिका भी अगर पी लिया है, एको पी कृष्ण समर्चिता, एक बार भी भगवान का समर्पण समर्चन किया है, अर्चना किया है, तो यस यम किम कुरते चर्चा। यमराज उसकी फिर चर्चा नहीं करते हैं। यमराज मतलब यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। यस यम किम कुरते चर्चा, यमराज साहस नहीं करते उसको लाने के लिए, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान का साहित्य भगवत गीता और भगवान के चरणों से जो निकली गंगा है, जो वस्तु का भगवान से संबंध है वो भी शक्तिशाली हो जाता है, वो भी भगवान का एक रूप माना जाता है। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, भगवान से संबंधित वस्तुओं, जैसे भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के नाम से भगवान से जिनका संबंध हो, उनका भी सानिध्य करने से वो भय से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे नारद जी के संसर्ग से मृगारी महान भक्त बन गया और भगवान का नाम जप करके इस तरह से पाप से मुक्त हो गया। तो जो भगवान का नाम जप करता है तो सद्यो ततः सद्यो विमुच्यत, तुरंत वो मुक्त हो जाता है और फिर उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का नाम जो है अभय देने वाला है। भगवान श्री राम जब हिंद महासागर के तट पर गए और हिंद महासागर से प्रार्थना कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा के तहत समुद्र से रास्ता मांगे, लेकिन हिंद महासागर ने रास्ता नहीं दिया, तो भगवान अपने दृष्टि से ऐसे थोड़ा देख दिए तो समुद्र जो है में उबाल आ गया था। उसी तरह भगवान का नाम भी शक्तिशाली है, जैसे भगवान शक्तिशाली है वैसे उनका नाम भी शक्तिशाली है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने नाम में अपनी सारी शक्ति अर्पित किए हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान स्वयं अपने समस्त शक्तियों को अपने नाम में अर्पित किए हैं, इसलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न, अभिन्नत्वा नाम नामिने, भगवान का नाम लेना भगवान का आलिंगन करने जैसा है। अगर कोई भगवान का नाम जिह्वा से उच्चारण करता है तो उसके रोम रोम में भगवान का सानिध्य होता है। इस संदर्भ में भक्त लोग एक कथा करते हैं कि एक बार एक व्यक्ति शौच करने के लिए गया था फील्ड में, शौच के लिए पहले लोग फील्ड में जाते थे, आज भी गांव में लोग कितना भी शौचालय बनाए फिर भी लोग मैदान करने के लिए, शौच करने के लिए फील्ड में जाते हैं। हमने विद्यालय में एक जगह विद्यालय में लिखा था विद्यालय के ऊपर कि शौच करे शौचालय में, आप बच्चे पढ़े विद्यालय में, लेकिन उस विद्यालय में शौचालय बिल्कुल टूटा फूटा था। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शौचालय इतना खराब है कि वो खड़े होंगे तो उसमें गिर जाएंगे गड्ढे में। हम अपने गांव के विद्यालय में गए तो गए कि एक भक्त है कि झोली पकड़िए, मैं लघु शंका के गया देखने तो खड़ा होने लायक भी नहीं था वहां। शौच करे शौचालय में, आप बच्चे पढ़े विद्यालय में, क्या बच्चे पढ़ेंगे विद्यालय में? विद्यालय का आजकल सरकारी विद्यालय में न टीचर है पढ़ाने लायक, न विद्यालय है बैठने लायक। सरकारी स्कूल में बहुत स्थिति है, शौचालय भी जो सरकारी अनुदान से शौचालय बने बिल्कुल है, तो शौचालय में लोग आज भी 90% लोग गांव में रहने वाले मैदान करने के लिए शौच करने के लिए फील्ड में जाते हैं। तो एक व्यक्ति शौच करने के लिए फील्ड में गया था लोटा में पानी लेकर के, और जप भी कर रहा था, शौच पर भी बैठा था, राम 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 सीताराम सीताराम। ज्यादातर गांव में बूढ़े बूढ़ी लोग महामंत्र बोलेंगे तो नहीं बोल पाते हैं, हम लोग बोलते हैं बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनको बोले बोलिए तो बोलेंगे हरे कृष्ण हरे राम, पूरा नहीं बोल पाते हैं, या राम राम कृष्ण कृष्ण, बहुत मुश्किल से बहुत प्रयास करेंगे तो एक लाइन बोल पाएंगे। कोई कोई लोग बोल लेते हैं, कोई कोई लोग पूरा महामंत्र नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग बोल कोई बात नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नहीं आता है तो वो हरे राम यही बोलते हैं, हरे राम या सीताराम, इजी है सीताराम बोलना, राधे श्याम। तो वो व्यक्ति शौच कर रहा था तो उस राम राम जप रहा था, जैसे बहुत लोग शौचालय में न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं, चाय लेकर जाते हैं कि दो काम निपटा लो। मुंबई में बहुत भागा भागी है लोग, व्यस्त जीवन में रहते हैं तो शौचालय में ही न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, एक काम निपटा लिया, चाय भी पी लेते हैं कि चलो दो काम निपटा लिया, फिर नहाएंगे करेंगे फिर ट्रेन में जाएंगे। तो व्यक्ति भी हो सकता है नाम जब करता होगा तो सोचा कि कुछ माला कर लूं शौच पर ही। तो हनुमान जी जा रहे थे तो देखे कि भगवान का परम पवित्र नाम जो है शौच कर रहे नाम जप कर रहे, तो हनुमान जी थोड़ा पैर से उसको कर दिए। तो जब हनुमान जी आए तो भगवान के दरबार में, राम दरबार में है, तो भगवान श्री राम बहुत कराह रहे थे पीड़ा से कमर पकड़ करके। तो हनुमान जी कहे कि किम करोति, मैं क्या करूं, किंकर मतलब किम करोति, हनुमान जी किंकर हैं, भगवान राम के किंकर हैं। तो कहे कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं आपके, क्या हो गया? तो भगवान कहे कि तुम्हारा पैर का आघात जो है मेरे कमर पर लग गया है। तो हनुमान जी ये कैसे हो सकता है, आपको मैं अपना पैर कैसे लगा सकता हूं? तो भगवान कहे कि व्यक्ति शौच पर मेरा नाम जप कर रहा था तो मैं उसके रोम रोम में बास कर रहा था। भगवान का नाम जब जो करता है, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा पर भगवान का नाम लेने से भगवान का सानिध्य उसके रोम रोम में आ जाता है। तो हनुमान जी से कहे भगवान कि वो व्यक्ति मेरा नाम जप कर रहा था, मेरे नाम में इतना अभिनिवेश था कि उसके रोम रोम में मैं था, इसलिए उस तुम्हारा पैर का आघात मैं धारण कर लिया। तो भगवान का नाम कोई कैसे भी, यहाँ तक कि शौचालय में भी अगर कोई लेता है तो भी कोई ये नहीं है, किसी भी अवस्था में। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा सदा सर्वदा, चाहे आप कैसे भी हो किसी भी अवस्था में, खाईते पीते सोते यथा तथा नाम लय। कभी कभी हम लोग शौचालय में मन में नाम जप करते मानसिक, तो भगवान का नाम जो है इतना शक्तिशाली है, इसलिए तत्त्व सद्यो विमुच्यत, अगर कोई भगवान का नाम जप करता है तो तुरंत ही वो भय से मुक्त हो जाता है, यहां तक कि जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, भगवान के नाम इतनी शक्ति है। एक बार सार्वभौम प्रभु कथा कर रहे थे कि एक व्यक्ति अपने दुकान में बहुत व्यस्त था, तो उसके दुकान में एक दिन एक महात्मा आ गए, तो महात्मा आए तो दुकान में सौदा देने में व्यस्त था, नौकर चाकर लोग भी व्यस्त थे, तो महात्मा आए तो उनको स्वागत करने के लिए ग्राहकों को रोक दिया कि आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। तो महात्मा का स्वागत किया, जलपान कराया और कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप आए हैं। हम लोग घर गृहस्थी में इतना व्यस्त हैं कि भक्ति करने का हमें अवसर नहीं मिल पाता है। संसारी लोग घर गृहस्थी काम इतना व्यस्त हैं, लेकिन कभी कभी महात्मा लोग उनके यहाँ जाते हैं और उनको भगवान नाम का उपदेश करते हैं। संसारी लोग अपने गृह कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको याद नहीं होता है कि हमें भगवान का नाम जप करना है। लेकिन कभी कभी महात्मा लोग महत विचलनम दृणाम गृहिणी गृहचेत शाम महत विचलनम, कभी कभी महात्मा लोग महत विचलनम माने अपने आश्रम से कुटिया से बाहर जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? गृहिणी, जो घर गृहस्थी में जिनकी चेतना गृह में थी, जिनकी चेतना पूरे घर गृहस्थी में ही कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में ही लगा हुआ है, वैसे दिन दिन चेतसह वैसे लोगों के यहाँ जा करके उनको भगवान नाम का उपदेश करते हैं। इसको महत विचलनम, जैसे सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, प्रहलाद महाराज, ऐसे बड़े बड़े लोग कभी कभी जाते हैं ग्रामीण जनता में, जो घर गृहस्थी में बहुत व्यस्त हैं, जिनको भगवान के विषय में जिनकी चेतना नहीं जागृत है, तो उनको उपदेश करते हैं। तो महात्मा कहे कि नाम जप करते हो? बोला कि नहीं, मैं तो दुकान में व्यस्त रहता हूँ सुबह से रात तक। तो महात्मा जी कहे कि कुछ नाम जप किया करो, तो काम तो इतना रहेगा ही, जब तक जिंदगी है काम से फुर्सत नहीं होगी, इसी में कुछ समय निकालो। तो महात्मा जी कहे कि महात्मा उपदेश कर रहे थे लेकिन उसका ध्यान जो है अपने दुकान में था, इतनी लंबी लाइन लग गई थी, उसका दुकान बहुत नामी था और बहुत लोग आते थे खरीद बिक्री करने, जैसे कोई जनरल स्टोर हो, नामी बनिया बदनामी चोर कहावत है, कोई नामी बनिया है तो बोलते देखो उसके दुकान में जाना, बहुत अच्छा सौदा मिलता है। आप बदनामी चोर है तो कहीं भी चोरी होता है तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है, यही चोरी किया होगा। तो कोई बहुत ख्याति प्राप्त है, कोई दुकानदार बहुत फेमस है, तो सड़ा गला वस्तु भी देगा तो उसके नाम से लोग बोलेंगे हाँ वो अच्छा देता है, ऐसा मत कहिए बहुत फेमस है। तो उसके दुकान में बहुत भीड़ लगती थी, उसका ध्यान जो है अपने ग्राहकों पर था। अब महात्मा उपदेश करे तो उस पर ध्यान नहीं था कि ये कब भागे कि हम अपना दुकान संभाले। तो महात्मा जी कहे कि तुम जप करना सीताराम सीताराम। महात्मा उपदेश करके चले गए, सार्वभौम पर कथा कर रहे थे। और बाद में दुकान रात हो गई, दुकान को समेट कर घर गया तो सोचा कि थोड़ा नहाते समय ही बाथरूम में जप कर लूंगा। तो ध्यान करने लगा क्या मंत्र दिए थे, तो उसको आया कि घसीटा राम, सीताराम नहीं समझ में, बोला कि महात्मा जी घसीटा राम नाम दिए। तो घसीटा राम जपता था। ये मुंबई में घसीटा राम हलवाई थे, इस्कान के मेंबर थे, तो सीताराम के जगह घसीटा राम जपता था, घसीटा राम। उसको ध्यान में नहीं था कि महात्मा जी सीताराम बोले थे। सार्वभौम सार्वभौम प्रभु कथा करते हैं, अब कहाँ से है क्या है। तो एक समय में कुछ समय के बाद वो महात्मा जी फिर दुकान में आए, तो महात्मा जी से बातचीत हुआ, खान पान हुआ, फिर कहे कि जप करते हैं ना? तो बोला हाँ गुरु जी जप करता हूँ, घसीटाराम जपता हूँ। तो गुरु जी बहुत गुस्से में हो गए, कहे कि ये कौन सा मंत्र ले लिया, कहाँ से मंत्र लिया ये। तो महात्मा जी समझे कोई दूसरा गुरु बना लिया घसीटाराम। तो बोले कि मैं तो तुमको सीताराम कहा था कि सीताराम जपना। तो महात्मा डांट रहे थे तब तक भगवान वहां प्रकट हो गए, उखल में बंधे हुए भगवान प्रकट हो गए और कहे कि क्यों डांट रहे, मेरा ही नाम है घसीटाराम, माँ जसोदा ने मुझे उखल में जब बांध दिया था तो उखल को घसीट करके मैं यमलार्जुन वृक्ष को गिरा दिया था, तो मुझे माँ ने घसीटाराम नाम दिया था, घसीट करके उखल को ले गया था। तो भगवान उखल बंधन लीला वहां प्रस्तुत किया और कहे कि मेरा नाम है घसीटाराम, ये सही जप रहा है, आप डांटिए मत। तो इस तरह से अगर कोई भगवान का नाम प्रेम से श्रद्धा से अगर ले तो उसकी क्या महिमा है, बहुत महिमा है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ के आपन्न संस्कृतिम घोरा, भगवान का नाम अगर प्रेम से श्रद्धा से चाहे अनजाने में भी चाहे कैसे भी किसी भी अवस्था में अगर कोई लेता है तो सद्यो विमुच्यत, तो तुरंत ही वो मुक्त हो जाता है। और इस नाम से भय यमराज भी डरते हैं। नल नील तो जाति के बानर थे, और सेतु बंधन में जब सेतु बंद हो रहा था रामेश्वरम में, वो पत्थर पर राम नाम लिख करके फेंकते थे, और पत्थर भी पानी पर तैर रहा था। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि नल नील पत्थर पर राम नाम लिख करके डालते थे। ऐसे उनको सांप भी मिला था, तो चौकी मुनि सांप दिए थे, तो वो जो भी पत्थर फेंकते थे वो पानी में तैरने लगता था। तो सेतु बंध में पत्थर पर राम नाम अंकित करके तो बंधन हुआ था। तीस हरिनाम दिवस, विश्व हरिनाम दिवस पर हम लोग को नाम की महिमा का प्रचार करना चाहिए, और अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। ऐसे भी पुरुषोत्तम मास है, आज से प्रारंभ हो रहा है ना, अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम, तीन नाम से जानते हैं, अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास। इसको अधिक मास की नृसिंह देव ने हिरणकश्यपु का वध किया था। अधिक मास में हिरणकश्यपु ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि 12 महीने किसी दिन न मरूं। ब्रह्मा जी से वचन दिया था कि साल के किसी महीने में न मरूं। 12 महीने साल में होते हैं, तो ब्रह्मा जी के ठीक है तुम नहीं मरोगे। तो उसको मारने के लिए भगवान नृसिंह देव ने अधिक महीने का सृजन किया था, तो अधिक मास में उसको मारे थे। तो अधिक मास आज से प्रारंभ हो रहा है, और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान पुरुषोत्तम माने भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पुरुषोत्तम आया है, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। पुरुषोत्तम योग गीता में भी है, पुरुषोत्तम योग, भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इस महीने को भी पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो इस महीने में अगर कोई नाम जप करता है, भगवान का कथा श्रवण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और उसका फल जो है 10 गुना हो जाता है। जो माला जप करने का जो फल होता है ये महीने में 10 गुना ज्यादा होता है जप करने का। इसलिए भगवान की भक्ति पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम देव श्री कृष्ण की आराधना करने से जीव का बहुत जल्दी ही कल्याण होता है, और उसकी विशिष्ट महिमा को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, कोई प्रश्न है तो 2-5 मिनट 3 मिनट का, हाँ बोलिए।
महाराज जी, ये जो श्लोक है तो इसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान का नाम लेने से आदमी तुरंत मुक्त हो जाता है।
हाँ।
और जैसे आपने भी बताया कि जैसे आग में आदमी हाथ डालता है तो आग ये नहीं देखता है, वो जलाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तुरंत मुक्त हो जाता है, और फिर हम आगे फिर पढ़ते हैं ऐसा भी कि अभी उसमें शुद्ध नाम तो नाम अपराध ये बहुत सारे उसमें अलग अलग स्थिति है, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर इसको कैसे समझे फिर?
अच्छा, तो ये भी कहा कि एक नाम लेने से ही पाप से आदमी मुक्त हो जाता है। एक कृष्ण नामेर पापी जत पाप छय, बहु जन्मे से ही पापी करते नारायण। पाप का जहां तक सवाल है, तो वो पाप तो एक नाम जप करने से ही ये हो जाता है, खत्म हो जाते, बल्कि उतना पाप हम कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन नाम जप करने का उद्देश्य केवल पाप को हटाना नहीं है, प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हम अधिक से अधिक नाम जप करते हैं। बुखार तो एक टैबलेट खाने से भी उतर जाता है, लेकिन पूरा कोर्स हम करते हैं स्वस्थ होने के लिए। तो नाम जप का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, पाप हटाना। तो नामाभास से ही पाप दूर हो जाता है, नामाभास से। जैसे अजामिल जो है, नामाभास अपने पुत्र का नाम लिया था, अनजाने में चाहे कैसे भी भगवान का नाम लेता है तो पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण में प्रेम आविष्ट करने के लिए अधिक से अधिक नाम जप किया जाता है। उसी तरह से कैसे भी अनजाने में भी अगर भगवान का नाम लिया है तो तुरंत तो भय से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। अब भय, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय है। नाम एक बार भी अगर कोई ले लिया है तो फिर वो भव बंधन में नहीं गिरता है, मुक्त जाते एक नाम लेने से भी।
मेरा यही तो प्रश्न है कि जैसे हम कहते हैं कि एक बार भी नाम ले तो भव बंधन में नहीं गिरता है, लेकिन फिर वापस हम ये भी सुनते हैं कि फिर वापस तो जन्म लेना है, ऐसा जब तक शुद्ध नाम नहीं होगा तब तक तो आवागमन चालू ही रहेगा। मेरा यही तो प्रश्न है।
शुद्ध नाम इसलिए जपा जाता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम। और बाकी जो चीज है, जैसे पाप से मुक्ति होना, निम्न जोनियों में जाने से हमें अपनी रक्षा कर लेना, भव बंधन में न गिरे नरक में, वो तो नामापराध, नाम अपराध युक्त से भी हो जाता है। कोई अपराध युक्त भी नाम जप करता है, अपराध युक्त, तो भी वो भय से मुक्त हो जाता है। लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए शुद्ध नाम जपना चाहिए। हो सकता है कि अजामिल नरक में जाने से बच गया कि नहीं, बच गया, नरक में ले जाने वाला था ना, लेकिन नामाभास से बच गया। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम नरक में जाने वाले हैं, हमारी दुर्गति होने वाली है, तो अपराध युक्त नाम भी कर रहे हैं, नामापराध से भी वो बच सकता है। नाम जब भी करे, अपराध भी कर रहा है, तो वो नाम से भी वो बच सकता है। नाम की तीन श्रेणियां हैं, नामाभास, नामापराध और शुद्ध नाम। तो बिना शुद्ध नाम किए वो कृष्ण प्रेम में आविष्ट नहीं हो सकता। लेकिन अन्य जो है, ये जन्म मृत्यु संस्कृति से बचना, ये तो नामाभास से ही बच सकता है। जैसे अजामिल जो है, नामाभास से ही वो नरक जाने से बच गया, भय से मुक्त हो गया। और अंत में शुद्ध नाम जप किया हरिद्वार में जाकर के 15 वर्ष, तब वैकुंठ में गया। समझ गए ना? तो शुद्ध नाम जब कोई करता है तब कृष्ण भगवत धाम में प्रविष्ट होता है, बाकी नरक यातना से मुक्त हो जाता है, दुर्गति से बच जाता है नामापराध। इसलिए नामापराध भी शक्तिशाली है, नामापराध युक्त जप भी यमराज को रोक देता है, यमराज वहां भी नहीं जा पाते हैं। यद विभेति स्वयं भयम्, स्वयं भय भी भगवान के नाम से डरता है, चाहे नाम किस श्रेणी में हो यह नहीं देखा जाता है। अजामिल तो भगवान का नाम नहीं लिया था, अपने पुत्र का नाम लिया था। ऐसे देखा जाए तो अपराध युक्त, अपराधी था वो, महाअपराधी था, तो नाम अपराध हुआ। लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने के लिए विष्णु के दूत आ गए। तो कोई कैसे भी भगवान का नाम अगर जप करता है, नामापराध में भी जप करता है, तो धीरे 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 नामापराध से शुद्ध नाम में आ जाता है। जैसे बीमारी में भी दवाई खाते 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 हो फिर स्वस्थ हो जाता है। नाम अपराध का भी इलाज यही है, जप करना। जप करने से ही वो अपराध से धीरे 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 शुद्ध नाम में अवस्थित हो जाता है। बीमारी में कोई कहे कि हम स्वस्थ हो जाएंगे तब दवा खाएंगे, दवा खाएगा तभी ना स्वस्थ होगा। महाराज एक बार कह रहे थे कि कोई कहे कि हम स्वस्थ हो जाएंगे तब दवा लेंगे, अभी बीमार हैं। नम अपराधी है, अपराध कर रहा है तो भी उसको यही कहा जाए कि जप करो। वो जप करते 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 अपराध से मुक्त हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति आएगी कि वो फिर एक दिन वो शुद्ध नाम जप में स्थिर हो जाएगा। उसकी चेतना अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उससे बचने लगेगा। फिर जैसे अभी हम लोग जप करते हैं तो अनेक प्रवृत्ति है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, किसी को ठगने की प्रवृत्ति है, किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति है, अपराध करने की प्रवृत्ति है, भोग की प्रवृत्ति है, अनेक प्रवृत्तियां हैं हमारे हृदय के अंदर, अनेक प्रवृत्ति है। लेकिन हम कोशिश करते हैं और इस तरह से अनवरत जप करते रहेगा उसी स्थिति में, तो एक दिन स्थिति उसकी बदल जाती है। एक दिन उसका हृदय धीरे धीरे उस कलमश से दूर होने जा, जो अनर्थ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और अनर्थ जब खत्म हो जाता है तो फिर शुद्ध नाम में वो आ जाता है। जैसे बच्चे जब चलते हैं तो गिर जाते हैं, छोटे बच्चों को माँ चलना सिखाती है ना उंगली पकड़ करके, तो चलते चलते गिर जाते हैं, कई बार गिरते हैं। लेकिन ऐसे अभ्यास करते 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 वो फिर चलने लगते हैं। तो हम अभ्यास के अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में हम गिरते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं, लेकिन लगे रहेंगे तो उसमें फिर सफलता मिल जाती है, सफल हो जाते हैं। फिर हमारी जो प्रवृत्ति है, जो अनर्थ करने की प्रवृत्ति है, वो कम होने लगती है। और कोई बहुत निष्ठा से रुचि से जब नाम जप करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति, अपराध करने की प्रवृत्ति छूट जाती है। लेकिन प्रारंभ में अपराध तो होता ही है, लेकिन अपराध हो रहा है तो अपराध को जैसे नहीं छोड़ रहे हैं वैसे नाम जप को भी नहीं छोड़ना है। एक भक्त ने कहा कि महाराज हम बहुत अपराध करते हैं, हम माला नहीं लेंगे, हम बहुत अपराध करते हैं, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारा आचार सही नहीं है। तो महाराज कहे कि तुम्हारा सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ करिए रहे हो तो ये भी करो, इसको भी अपने रूटीन में बना लो, जप करो। आप जब बीड़ी पीना नहीं छोड़ रहे हो तो नाम जप क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है तुम नहीं छोड़ते, इसको भी मत छोड़ो, इसको भी अपने व्यसन में बना लो, हैबिट में बना लो। से बीड़ी पीने की हैबिट हो जाती है तो नहीं छूटता है, कोई भी हैबिट हो जाए, तंबाकू खाने का, बीड़ी पीने का, भक्त होने के बाद, माला जपने के बाद भी नहीं छूटता है, चोरी छुपे हम लोग खा लेते हैं। बहुत ऐसे भक्त देखे गए हैं जो दीक्षा होने के बाद भी उनकी आदत कुछ रह जाती है, वो बाथरूम में चोरी से इधर उधर छुपा कर रखे रहते हैं, कभी खा लेते हैं। बहुत समय लगता है जाने में आदतें, तो जब बुरी आदतें हम नहीं छोड़ते हैं तो इसको भी उसी बुरी आदतों के साथ जोड़ लीजिए, ये भी एक आदत है कि इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। लोग आते हैं ना कि काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तुम क्रोध को नहीं छोड़ा, लोभ को नहीं छोड़ा, नाम जप करना क्यों छोड़ रहे हो? इसको भी मत छोड़ो। ठीक है हमसे क्रोध नहीं छूटता है, हमसे गलत चीजें खाने की जो प्रवृत्ति वो नहीं छूटती है, ये सब जब नहीं छोड़ रहे हैं तो नाम जप को भी नहीं छोड़ना है, इसको भी अपने व्यसन में बना लेना है। अब इसको जब हम नहीं छोड़ेंगे तो धीरे धीरे जो बुरी आदतें हैं, जो व्यसन है, वो धीरे धीरे छूट छूट जाएगा। इसका ये यही शास्त्र का ये है कि जैसे भी किसी भी अवस्था में हमारी बहुत गलत अवस्था है तो भी हमें जप करना है। एक बार महाराज जी इस संदर्भ में कथा कर रहे थे, बोले कि लोग गाना गाते हैं कि मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वार, मैली चादर ओढ़ के प्रभु द्वार तुम्हारे, कैसे है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे प्रभु, हमारा शरीर रूपी चादर तो बहुत मैला है, मैं बहुत पाप करता हूँ। मैली चादर माने शरीर को ही चादर कहा गया, इसमें अनेक गंदे हैं, ये मैली चादर लेकर तेरे द्वार कैसे आऊं। तो भगवान ये तो बात कहे नहीं है, भगवान तो कहे कि तुम्हारा जितना पाप है लेकर मेरे पास आ जाओ। महाराज कहे कि ये लोग गलत गाना गाते हैं। भगवान तो नहीं कहे कि तुम्हारा बहुत पाप है, मेरे पास मत आओ, दूर भागो। भगवान तो कहे कि सर्व अहम त्वम सर्व पापयोभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, तुम्हारा जितना पाप है जन्म जन्मांतर का, जुग जुगांतर का, कल्प कल्पांतर का, सब लेकर मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। मोक्षिष्यामि मा शुचः, भगवान ये नहीं कहे कि तुम स्वच्छ हो जाना, अपना चादर पूरा धुलाई कर लेना, ड्राई क्लीन कर लेना, तब ले आना। नहीं, भगवान तो कहे कि अहम त्वम सर्व पापयोभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, तुम्हारा जितना भी पाप है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वम सर्व पापयोभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, तुम्हारा जितना पाप है। लेकिन बाहर के लोग तुकबंदी बनाकर गाना गाते तो बोलते हैं वाह कितना अच्छा गाना गाया, देखिए तो अब मैला शरीर लेकर भगवान के पास कैसे जाऊं। भगवान तो कहते हैं तुम्हारा जो भी है, जितना भी पाप है, आओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दूंगा। अब जैसे भी कोई किसी भी अवस्था में भगवान का नाम जप करता है तो अवश्य एक दिन शुद्ध हो जाता है, और चाहे अपराध हो, चाहे नामाभास हो, चाहे शुद्ध नाम हो, जप करना है। कोई कहता है कि हमारा मन तो इधर उधर भागने लगता है, मैं क्या करूं। एक प्रश्न भक्त ने कहा कि महाराज जी मेरा मन बहुत इधर उधर भागता है, तो महाराज बोले कि मन थोड़े जप करता है, जीभ से जप करना है। भगवान तो कहीं नहीं कहे कि मन से जप करो, भगवान तो कहे कि यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जीभ से भगवान का नाम जप करना है। मन को जहां भागना है भागने दीजिए, प्रारंभ में मन के पीछे अगर पड़ेंगे आप तो आप जप नहीं कर पाएंगे। मन को जहां जाता है छोड़ दीजिए, वो भाग करके थक कर आ जाएगा। आप जिह्वा को लगाइए, जीभ को नाम उच्चारण में लगाइए। जीभ को नाम उच्चारण में लगाएंगे और ऐसे जप करते रहेंगे तो मन अपने आप भाग करके थक पाकर आ जाएगा। जीभ से जप करते रहना है, आपकी मानसिकता आपकी जैसी भी हो जप करते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। मन हमारे वश में तो नहीं है, लेकिन जीभ को तो हम लगा सकते हैं ना उच्चारण में। तो जो अपने से होने वाला है उसके विषय में सोचना है। जीभ को इस तरह से लगाएंगे भगवान के नाम जप में और भगवान के प्रसाद में, सही अनमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। जीभ से हमें दो काम करना है, नाम जप करना है और भगवान का प्रसाद खाना है। तो मन धीरे धीरे आएगा सात्विक अवस्था पर। मन को बस में करना है, शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीव फैले विषय सागरे। शरीर अविद्या का घर है और इसमें जो इंद्रियां हैं काल के समान है, जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीव फैले विषय सागरे। जीव को विषय सागर में बार बार डाल देती है। जीव फैले विषय सागरे, तार मध्य जिह्वा यति, और इसके बीच में जिह्वा है, लोभमय सुदूर मति, बहुत दुष्ट मति है और लालची है, खाने के लिए इधर उधर जाती है। जिह्वा रे लालच बछ इसे उचाय, लोभमय है जिह्वा और सुदूर मति, ये दुष्ट मति है जिह्वा। इसको बस में अगर कोई कर लिया जिह्वा को, तो सब इंद्रियों को बस में कर सकता है। लोभमय सुदूर मति ताके जेता कठिन संसारे, जिह्वा को जितना बड़ा कठिन है। लोग बोलते हैं कि जीभ को और लिंग को जो बस में कर लेता है, पहले जीभ को जो नियंत्रित कर लेता है कि हम गलत नहीं खाएंगे जब करेंगे, तो जिह्वा को, उदर को और जननेन्द्रियों को बस में कर सकता है। तीनों समानांतर हैं, जीभ, उदर और जननेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, उदर और जननेन्द्रिय। तो तार मध्य जिह्वा यति लोभमय सुरूर्मति ताके जेता कठिन संसारे, इसको जीतना बड़ा कठिन है जिह्वा को। लेकिन कैसे जीत सकते हैं कि सही अनमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य। दो काम करना है जीव को, जीव को बस में जो कर लिया तो जननेन्द्रिय को बस में कर सकता है, और इस तरह से वो और इंद्रियों को भी वो नियंत्रित कर सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।